Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aur yahi se hriday se hi upar ki or bhi ye chala jata anna ras. Aur aapke शीर में, और शीर कहा जाता है गर्दन के ऊपर वाला जितना भाग है वो पूरा शीर कहलाता है। शीर काट करके लाया का मतलब होता है खाली जिसमें केस है उतना भाग ही नहीं होता, शीर गर्दन के ऊपर वाला भाग वो शीर कहलाता है। वो राहु का, एक राहु नाम का जो दैत्य था उसका शिरच्छेदन भगवान ने किया ना, लेकिन अमृत गया था धड़ में भी और शीर में भी तो उम्र तो नहीं पाया, इसलिए राहु जो शीर है वो राहु नाम का नौ ग्रह में से एक ग्रह बना और केतु नाम का बना उसका वो धड़। तो ये जो शीर है, राहु शीर कहा जाता है, वो शीर गर्दन के ऊपर वाला जो भाग है उसे कहा जाता है शीर, और उसमें है सात अलग अलग गोलक इंद्रियों के। दो तो हैं श्रोत्र इंद्रिय के गोलक, दो कर्ण सस्कुलिया, दो हैं नेत्र इंद्रिय के गोलक चक्षु, और दो हैं घ्राण इंद्रिय के गोलक, और एक है रसन इंद्रिय का गोलक। और इन सात द्वारों से इंद्रिय अपने अपने विषय के इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिया ही अपने अपने विषय के ओर ले जाती हैं मन को, और फिर वहां पर बन जाता है विषयों के साथ मन का संबंध। तो माना जाता है विषयों का ज्ञान हुआ, ज्ञान है प्रकाश, प्रकाश है अग्नि का एक प्रकार से अर्ची के तरह अर्चिया, ये ज्वालाएं दीप्तिया। अग्नि भी जब प्रकट होता है तो खाली अंगारे से उतना प्रकाश नहीं होता ना, और जब जलता है और उससे ज्वालाएं निकलती हैं, अलग अलग अर्चियां निकलती है तो प्रकाश ज्यादा होता है ना। ऐसे माना जाता है कि ये जो शीर्षस्थ इंद्रियों के अलग अलग सात द्वार रूप गोलक हैं, इन गोलकों के माध्यम से हो रहे हैं जो हमें ज्ञान शब्दादि विषयों के। यही इस अन्न से होने वाले वो अर्ची के तरह अर्ची है। यदि अन्न रस न बने, उदर्य अग्नि हमारे खाए हुए अन्न को पचाए न, और तो अन्न रस नहीं बनेगा, अन्न रस नहीं बनेगा तो सारी इंद्रियां भी यानी इंद्रियों के गोलक भी दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल होने से फिर जिसने महीनों से भोजन नहीं किया उसे कहें कि ये गीता है इसका पाठ करो, तो गीता के श्लोक भी ठीक से वो देख नहीं पाएगा, वाणी से ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। और उसे कहो कि सत्संग चल रहा है, सत्संग में चल करके बैठो और सुनो, तो वो ठीक से सुन भी नहीं पाएगा, शब्द ग्रहण भी नहीं कर पाएगा जिसने महीनों से भोजन नहीं किया है। वह का अर्थ है इन सात द्वारों के माध्यम से जो शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है वह ज्ञान करने के लिए इंद्रियों के यह द्वार होने चाहिए बलवान शक्तिशाली, और इनको शक्ति मिलती है उसी अन्न रस से, और उस अन्न रस को पचाता है जाठराग्नि। इसलिए माना जाता है जाठराग्नि का भी थोड़ा सहयोग अन्न रस बनाने में होने से, और उसी से पुष्ट होकर के इंद्रियों के यह गोलक आपको अपने अपने विषयों का ज्ञान कराने में हमेशा उद्यत रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये कहा गया कि यह उदर्य अग्नि की सात ज्वालाओं के तरह ये ज्वालाएं हैं, अर्चिया हैं, कि तस्मात एता सप्तार्चिसो भवंती। तस्मात शब्द से लिया जाता है उदर्य अग्नि के द्वारा पचाया गया जो अन्न, और वो अन्न रस जो उदर्य इन गोलकों में पहुंचा है उसमें निमित्त एक जाठराग्नि भी होने के कारण जाठराग्नि की अर्ची के तरह अर्चिया ये सात है। यानी इन सात द्वारों के माध्यम से होने वाले विषयों के ज्ञान ये ज्वाला के तरह ज्वालाएं हैं उस जाठराग्नि के। जैसे आप लौकिक बाह्य यज्ञशाला में स्थापित आवनीय अग्नि में घृतादि डालते हो, हवन सामग्री, तो उससे वह आवनीय अग्नि प्रदीप्त होकर के उसकी अर्चिया निकलती है ना, ज्वालाएं निकलती है। ऐसे यह आपके द्वारा भुक्त अन्न से प्रदीप्त होकर के चक्षुरादि इंद्रियों के गोलक आपको रूपादि का ज्ञान करा रहे हैं, तो माना जाता है वह उदर्य अग्नि रूपी आवनीय अग्नि से निकल रही है ज्वालाएं के तरह ज्वालाएं। ये तस्माद एता सप्तार्चिसो भवंती ये कहा गया। अब ये जो अभी तक प्राण के तीन भेद बताए गए, अपान, प्राण और समान, बचे हैं व्यान और उदान, ये दो भेद। और तो व्यान का निरूपण करने के लिए व्यान का स्थान है नाड़िया, नाड़ियों में व्यान विचरण करता है। जैसे नाभि में रहा समान, श्रोत्र चक्षु में रहा ये प्राण, ऐसे व्यान नाम का जो प्राण का भेद है उसका स्थान इस शरीर में कौन सा होगा, वो नाड़िया। तो नाड़िया कहां से उत्पन्न होती है, कहां से निकलती है, कहां जाती है, इन सब का वर्णन करने के लिए ये मंत्र है छठवा। हृदि हेस आत्मा अत्र एतद एक शतम नाड़ीनाम तासाम शतम शतम एक एकस्याम द्वा सप्ततिर द्वा सप्तति ही प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानः चरति। तो ये कहा गया कि एषः आत्मा हृदि, हृदय है आपके स्थूल शरीर का ही अंदर का भाग जो कमलाकार मांसपिंड है उसे कहा जाता है हृदय, और उस हृदय का स्थान है ये यहां जहां छाती और पेट के बीच में थोड़ा गड्ढा सा होता है ना, और वो गड्ढा होता है प्रत्येक व्यक्ति का अपने इस अंगूठे के बराबर का, वो अंगूठा उसमें आएगा, हर एक व्यक्ति का अपने अपने अंगुष्ठ परिमाण का ही वो गड्ढा होता है, और वहीं पर आत्मा स्थित है। इसलिए किसी का मौन हो और पूछे कि ये फूल का गुच्छा किसने लाया, और वो बोल करके तो बता नहीं सकता, तो इशारा करता है यहां पर मैंने लाया, ये बताना ऐसा। तो मैं का निर्देश करने के लिए जहां पर आपका स्वाभाविक रूप से हाथ चला जाता है वहीं पर माना जाता है हृदय का स्थान, वही वह कमलाकार मांसपिंड है और यहां पर उस हृदय शब्द से लेना है उस कमलाकार मांसपिंड से घिरा हुआ जो आकाश, उसमें थोड़ा अवकाश है, उसे हृदय आकाश कहा जाता है और उस हृदय आकाश में यह आत्मा रहती है, एष आत्मा। तो आत्मा से लेना यहां पर आत्मा की उपाधिभूत जो सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से भी लेना सूक्ष्म शरीर में जो प्रधान है, सूक्ष्म शरीर तो है 17 तत्वों का, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण, मन बुद्धि, इनमें प्रधान है मन बुद्धि, बुद्धि प्रधान है। और ये बुद्धि रहती कहां है, तो बुद्धि का गोलक माना जाता है हार्द आकाश को, ये जो हृदय आकाश है वहीं पर बुद्धि रहती है, मन रहता है, मन का गोलक है वो, अंतकरण का गोलक है और अंतकरण के दो भाग है बुद्धि और मन, वो रहेगा हृदय में। इसलिए कहा गया कि हृदि एष आत्मा, और जहां अंतकरण है तो माना जाता है अंतकरण विशिष्ट चैतन्य का नाम है जीव, वो जीवात्मा भी जहां उसकी उपाधि रहेगी वहां रहेगा। ऐसे स्वतः तो आत्मा है आकाश के तरह व्यापक सर्वत्र है, लेकिन जीवात्मा कहां है, तो जीवात्मा की उपाधि बुद्धि जहां रहेगी वहां जीवात्मा का अस्तित्व माना जाएगा। जैसे महाकाश तो सब जगह है और घटाकाश जहां घट होगा, घट से घिरे हुए आकाश को कहा जाता है घटाकाश, वो कहां है, तो जहां पर घट है वहां पर घटाकाश रहेगा। ऐसे जहां पर बुद्धि है वहां पर बुद्धि अवचिन्न चैतन्य रूप जीवात्मा रहेगा, बुद्धि से युक्त चैतन्य जिसे जीव कहा जाता है वो रहेगा। तो बुद्धि रहती है हृदय में, इसलिए आत्मा भी हृदय में है। और यहां आत्मा शब्द से लेना आत्मा की उपाधि बुद्धि मन, और वह हृदय पुंडरीक में है, हर्द आकाश में है। और ये मन यदि चक्षुरादि इंद्रियों तक न पहुंचे तो आपको रूपादि का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जागृत अवस्था में इंद्रिया अपने अपने गोलकों में रहती है और उन गोलकों से वे रूपादि विषयों में जाकर के रूपादि विषयों का ग्रहण करती है, लेकिन वहां यदि चक्षुरादि के गोलकों में नेत्रादि में मन न पहुंचे तो बिना मन के इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो पाएगा। ज्ञान का अर्थ ही होता है मन की वृत्ति, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो रूपाकार मन की वृत्ति बनी उसे रूप का ज्ञान कहा जाता है, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से जो शब्दाकार मन की वृत्ति बनी उसे शब्द का ज्ञान कहा जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है मन का हृदय से चक्षुरादि इंद्रियों के गोलक में पहुंचना, आवश्यक है वहां पहुंचना। इसके लिए फिर मन तो सीधे हृदय से निकल करके चक्षुरादि इंद्रियों में उड़ करके नहीं जा सकता, उसके पंख नहीं है, तो फिर कोई ना कोई मार्ग चाहिए ना उसको वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसी मन को विचरण करने के लिए ये नाड़ियां मार्ग के तरह मार्ग है। तो मार्ग फिर जहां मन होगा वहीं से निकलेगा ना, वहां से शुरू होगा और जहां उसे पहुंचना है वहां तक जाएगा। तो हृदय को माना जाता है नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान। यहां हृदय की चर्चा इसलिए की जा रही है और हृदय में स्थित मन को इसलिए बताया जा रहा है कि मन से ही आपको रूपादि विषयों का ज्ञान होना है और मन का जागृत अवस्था में रूपादि विषयों के ज्ञान के साधन भूत चक्षुरादि इंद्रिया जहां रहती है वहां जाना जरूरी है और रूपादि विषयों को ग्रहण करके फिर हृदय में आना जरूरी है। तो आने जाने के लिए हृदय से चक्षुरादि गोलक तक पहुंचने के लिए मार्ग चाहिए, उसको रास्ता चाहिए। वो मार्ग का काम करती है नाड़ियां, वो नाड़ियां निकलती है हृदय से ही, जहां प्राण है जहां वो मन है वहीं से नाड़ियां निकलेगी। इसलिए आगे कहते हैं कि तत्र एतत् एकशतम् नाडीनाम, तो तत्र यानी उस तत्र ने अत्र अत्र एतत् एकशतम् नाडीनाम, तो अत्र शब्द से लिया जाता है हृदय को। ये जो मन का गोलक है हृदय, उस हृदय से संबंध है 101 नाड़ियों का। एक शतम नाड़ी नाम का मतलब 101 नाड़ियां, ये मुख्य नाड़ियां हैं, इनको मुख्य नाड़ियां कहा जाता है। कुल नाड़ियों की संख्या तो बताई जाएगी 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, लेकिन इसमें मुख्य नाड़ी 101 है। और ये 101 नाड़ियां निकलती कहां से हैं? समुद्र में मिलने वाली नदियां जैसे अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं, बहते हुए चली जाती हैं समुद्र में, ऐसे यह मुख्य जो नाड़ियां हैं शरीर में वे 101 हैं और ये सब की सब हृदय से संबंधित हैं। शुरुआत उनकी हृदय से होती है और हृदय से निकल करके फिर ये 101 नाड़ियां जहां जहां जानी है हृदय के शरीर के भाग में वहां मान जाती हैं। और जाते समय ये नहीं होता है कि गंगा जी गौमुख से निकली और गंगा सागर में जाकर के गंगा सागर में मिली तो बीच में कोई नदी उसे न मिली हो। गंगा सागर और गोमुख के बीच में कितनी उपनदियां और उन उपनदियों की भी और उपनदियां आकर के गंगा जी में मिल जाती है। यमुना ही मिल रही है वहां पर, कहां? हाँ, प्रयागराज में। और यहां रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा और मंदाकिनी मिल रही है दोनों, फिर वो आकर के देवप्रयाग में मिल जाती है। तो गंगा जी कितनी सारी नदियों को अपने में समा करके गंगा सागर में जाकर के मिलती है। ऐसे 101 नाड़ियां तो हृदय से निकली, ये मुख्य नाड़ियां हैं और इन मुख्य नाड़ियों की उपनाड़ियां हैं प्रत्येक नाड़ियों की 100-100। 101 नाड़ियों की 100-100 हो जाएगी तो 1100 नाड़ियां वो हो जाएगी, 10,100 नाड़ियां उपनाड़ियां, उनको बताया जा रहा है कि तासाम शतम शतम एकैकस्याम। तो तासाम यानी जो मुख्य 101 नाड़ियां हैं उनमें से प्रत्येक मुख्य नाड़ी की शाखा नाड़ियां हैं 100-100। तो 100 नाड़ी की 100-100 होगी तो 10,000 हो जाएगी और एक की और 100, ऐसे 10,100 शाखा नाड़ियां हुई, प्रधान नाड़ियां हुई 101। ऐसे मुख्य नाड़ी और शाखा नाड़ी मिलकर के 10,201 हुई। और ये जो शाखा नाड़ियां हैं 10,100, इनकी फिर उपशाखा नाड़ियां हैं। उपशाखा नाड़ियां हैं कितनी? तो 10,100 नाड़ी में से हरेक नाड़ी से जुड़ी हुई उपशाखा नाड़ियां हैं 72,000। उसे बताया जा रहा है कि द्वा सप्तति ही प्रतिशाखा नाड़ी सहस्त्राणी भवन्ति। इस वाक्य से बताया गया कि 10,100 जो उपनाड़ियां हैं उनमें से हरेक उपनाड़ी की और प्रशाखा नाड़ी उसे कहा जाता है, उपनाड़ी से जुड़ी हुई नाड़ी वो हो गई प्रशाखा नाड़ी। और वो प्रशाखा नाड़ी की संख्या कितनी है? 72,000। तो 10,100 से 72,000 को गुनेंगे यदि तो वो हो जाती है प्रतिशाखा नाड़ियां 72,72,00,000। और उसमें उपशाखा नाड़ी जो है उनको मिलाएंगे तो वो हो जाती है शाखा नाड़ियां कितनी? 10,100। और मुख्य नाड़ियां मिला देते हैं तो वो हो जाती है 101। ऐसे 72,72,00,000 10,201 ये नाड़ियां आपके शरीर में हैं, प्रत्येक के शरीर में है। और इतनी नाड़ियां सब व्यान का स्थान है, व्यान इसमें विचरण करता है। व्यान नाम का जो प्राण का एक भेद है उसके लिए कहा गया कि आसू व्यानश्चरती। आसू यानी ये जो नाड़ियां हैं सब मुख्य नाड़ियां, शाखा नाड़ियां और उपशाखा नाड़ियां, इन सब में ये व्यान विचरण करता है। सामान्य रूप से सब में रहता है, व्याप्त होता है, इसलिए पूरे शरीर में व्याप्त होने से इसे व्यान कहते हैं। और जब इसका एक विशेष स्वरूप है व्यान का, वो रहता है प्राण और अपान की जो वृत्ति है। प्राण कहा जाता है अंदर की वायु बाहर निकल रही है मुखनाशिका से, तो प्राण जो रेचक होता है, रेचक करने वाला वो प्राण है। और बाहर की वायु अंदर जा रही है ऑक्सीजन, वो अपान की वृत्ति मानी जाती है। और इन दोनों का मध्य है जब आप बाहर का ऑक्सीजन अंदर भी नहीं ले रहे हैं और अंदर की वायु को बाहर भी नहीं कर रहे हैं, तो बीच में कुंभक होता है। कुंभक की स्थिति में मानी जाती है व्यान की वृत्ति। और ये श्वासोश्वास को रोक करके जब ज्यादा शक्ति लगा करके काम करना होता है ना, उस काम को करते समय यह व्यान वृत्ति होती है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा कहीं दौड़ने की जो स्पर्धाएं होती हैं तो दौड़ते हैं उस समय श्वास को रोक करके दौड़ते हैं, ज्यादा जोर से दौड़ना होता है। तो ऐसे तैरते हैं या कुछ बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, कुछ खींचना होता है, उस समय प्राण अपान की वृत्ति रुक जाती है और बीच में वो कुंभक होता है, वो व्यान वृत्ति मानी जाती है। और वो व्यान ऐसे सामर्थ्यशाली कर्म करते समय प्रकट होता है विशेष रूप से। बाकी सामान्य रूप में इन नाड़ियों में वह विचरण करता रहता है, ये बताया गया आसु व्यानश्चरति। सप्तम कंडिका का विचार हम लोग कल करते हैं। हरिओम।